नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त। प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए लगातार रैलियां कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का छठा संस्करण नई दिल्ली में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बेहतर कल के लिए लचीले बुनियादी ढांचे में निवेश करना महत्वपूर्ण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने में वन संरक्षण की भूमिका पर जोर दिया। अमरीकी सीनेट की टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी। और आईपीएल क्रिकेट में आज नई दिल्ली में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान होगा। इसमें केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 6, असम और बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 और त्रिपुरा तथा जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट शामिल हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के अंबिकापुर में जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, जबकि कांग्रेस हिंसा फैलाने वालों का समर्थन करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की कोशिश रही है कि आदिवासियों और अनुसूचित जातियों का आरक्षण कम करके धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस संविधान बदल कर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग का हक अपने वोट बैंक को देना चाहती है। श्री मोदी ने कहा कि ऐसे लोग जो भारत को शक्तिशाली और आत्मनिर्भर नहीं देखना चाहते, वे देश में विपक्ष की गठबंधन वाली कमजोर सरकार चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण की रक्षा सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया।
धान किसानों को दी गारंटी पूरी कर दी, अब तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी ज्यादा पैसा मिल रहा है, तेंदुपत्ता खरीद भी तेजी से हो रही है, यहाँ की माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना से भी लाभ हुआ है। मैं आज आपसे विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ।
श्री मोदी का मध्य प्रदेश के सागर और हरदा में जनसभाओं को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। बाद में श्री मोदी भोपाल में रोड शो भी करेंगे। गृहमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कांग्रेस और वाम दलों पर पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और एसडीपीआई जैसे राष्ट्रविरोधी ताकतों से समर्थन लेने का आरोप लगाया है। श्री शाह ने आज अल्लापूजा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि इन दोनों पार्टियों ने अल्पसंख्यक वोट बैंक की खातिर केरल में आतंकवाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में पीएफआई जैसे संगठनों को पनपने नहीं दिया जाएगा। श्री शाह ने भारत के परमाणु शक्ति संपन्न होने पर सीपीआईएम के विरोध की आलोचना की और कहा कि देश राष्ट्र सुरक्षा के हित में परमाणु शक्ति बना रहेगा। उन्होंने कहा कि ये चुनाव केरल को हिंसा के चंगुल से मुक्त कराने के लिए हो रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि आईएनडीआई गठबंधन पूरी तरह से बेनकाब हो गया है, क्योंकि कांग्रेस और वाम दल एक ओर दिल्ली में मंच साझा कर रहे हैं तो दूसरी ओर केरल में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। श्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के अमरावती में पार्टी उम्मीदवार नवनीत राणा के पक्ष में रैली को संबोधित करेंगे। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी अमरावती जिले के परतवाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने अमरावती लोकसभा सीट पर बलवंत वानखेड़े को उम्मीदवार बनाया है। डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर के पौत्र आनंदराज आम्बेडकर भी इस सीट पर भाग्य आजमा रहे हैं और उन्हें वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी का समर्थन हासिल है। बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर संजय गाड़गे को कर दिया है। असम की 5 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए कुल 61 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दलगांव में चुनावी रैली करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार बोहरा ने ननगांव निर्वाचन क्षेत्र में बैठक को संबोधित किया। एआईयूडीएफ अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल, बोडो पीपुल्स पार्टी प्रमुख हगरामा महिलारी भी आज चुनावी रैलियां कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज हम केरल के त्रिशूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं। इस सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। एक रिपोर्ट।
कांग्रेस और सीपीआईएम दोनों ने पिछले चुनावों में त्रिशूर से कई बार जीत हासिल की है, लेकिन इस बार भाजपा ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। भाजपा ने सुरेश गोपी को मैदान में उतारा है, जो संसदीय चुनाव के लिए इस निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वे 2019 में दौड़ में तीसरे स्थान पर थे। सुरेश गोपी ने कुल मतदान का 28.19% वोट हासिल किया था। यूडीएफ ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण के बेटे के मुरलीधरन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि एलडीएफ ने सीपीआई के वीएस सुनील कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है। मुरलीधरन जो पिछली बार वडकारा से जीते थे, उनकी बहन पद्मजा वेणुगोपाल के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने उन्हें त्रिशूर से उम्मीदवार बनाया है। तीनों दलों के उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और व्यापक स्तर पर जनसंपर्क कर रहे हैं। कोच्चि से राजमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
अरुणाचल प्रदेश की अरुणाचल पश्चिम लोकसभा सीट के 4 विधानसभा क्षेत्रों में 8 मतदान केंद्रों पर आज कड़ी सुरक्षा के बीच पुनर्मतदान हुआ। सुबह 6 बजे शुरू हुआ मतदान दोपहर 2 बजे समाप्त हो गया। निर्वाचन आयोग ने इन केंद्रों पर 19 अप्रैल को लोकसभा तथा विधानसभा के लिए हुए मतदान को निरस्त कर दिया था। बामेंग और न्यापिन विधानसभा क्षेत्रों में 1-1, रूमगोंग में 2 और नाचो विधानसभा क्षेत्र में 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हुआ। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा है कि उनके पार्टी के घोषणा पत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेचैन हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के एक सामाजिक न्याय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गांधी ने दावा किया कि पार्टी के घोषणा पत्र से प्रधानमंत्री हड़बड़ा गए हैं। राहुल गांधी का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस के घोषणा पत्र की आलोचना किए जाने के बाद आया है। श्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी लोगों की संपत्ति का बंटवारा करने की योजना बना रही है। कांग्रेस ने इस महीने के शुरू में न्याय पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इस घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी पर विशेष जोर दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बेहतर कल के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे में निवेश जरूरी है। प्रधानमंत्री ने आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर 6 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक वीडियो संदेश में कहा कि आपदाओं को अक्सर आर्थिक नुकसान की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन इनका व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों पर वास्तव में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और आपदा के बाद पुनर्निर्माण के प्रयासों में मजबूती के पहलू पर जोर दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं का प्रभाव सीमाओं से परे होता है और इससे निपटने के लिए देशों के बीच परस्पर सहयोग जरूरी है। 2 दिन का यह सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलवायु परिवर्तन के विषय को गंभीर बताते हुए इसके प्रभावों से निपटने के लिए वन संरक्षण की भूमिका पर जोर दिया है। राष्ट्रपति ने आज देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में भारतीय वन सेवा परिवीक्षाधीन अधिकारियों के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मानव जाति जानबूझकर वनों के महत्व को भूलने की गलती कर रही है। उन्होंने कहा कि मनुष्य पृथ्वी के अमूल्य संसाधनों का मालिक नहीं बल्कि संरक्षक है।
संसाधनों के अनसस्टेनेबल दोहन ने मानवता को ऐसे मोड पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां विकास के मानकों का पुनः मूल्यांकन करना होगा। आज ये समझना बहुत ही जरूरी है कि हम पृथ्वी के संसाधनों के ओनर नहीं है बल्कि ट्रस्टी। हमारी प्राथमिकताएं मानव केंद्रित होने के साथ साथ प्रकृति केंद्रित भी होनी चाहिए।
दीक्षांत समारोह में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के 2022-24 कोर्स के 99 परिवीक्षाधीन अधिकारियों को स्नातक की डिग्री प्रदान की गई। इनमें भूटान के 2 प्रशिक्षु अधिकारी भी शामिल हैं। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय नई दिल्ली में एक दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 1993 में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के जरिए स्थापित पंचायती राज व्यवस्था की याद दिलाता है। यह दिन समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने में विकेंद्रीकृत शासन के महत्व को दिखाता है, साथ ही जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के लिए भारत के समर्पण को दर्शाता है। आज आयोजित की जा रही राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्देश्य विकेंद्रीकृत शासन और जमीनी स्तर के लोकतंत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करना है। यह नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को विचारों का आदान प्रदान करने और पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने के लिए भविष्य की योजनाएं बनाने का अवसर प्रदान करता है। अर्पिता चौधरी के साथ दुर्गेश भदौरिया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ग्रामीण भारत में बदलाव लाने और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करने वालों की सराहना की है। राजस्थान के राजकीय और निजी अस्पतालों में अब मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण में प्रत्येक प्रत्यारोपण के लिए डोनर और रिसीवर की यूनिक नोटो आईडी जनरेट की जाएगी। इसके बिना प्रत्यारोपण संभव नहीं होगा। स्वास्थ्य विभाग ने यह कदम मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की सीनेट ने एक विवादास्पद विधेयक को मंजूरी दी है, जिसके तहत टिकटॉक को अमेरिका में प्रतिबंधित किया जा सकता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन इसे गंभीरता से ले रहे हैं। यदि ये विधेयक पारित हुआ तो चीन के ऐप बाइट डांस के पास अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए 9 महीने का समय होगा या इस ऐप को अमरीका में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। विशेषज्ञों ने कहा है कि इस प्रक्रिया में वर्षो लग सकते हैं। ये विधेयक यूक्रेन, इसराइल और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमरीकी साझेदारों के लिए सैन्य सहायता उपलब्ध कराने वाले 4 विधेयकों के भाग के रूप में पारित किया गया था, जिसे 79 सीनेटरों का समर्थन प्राप्त था। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने लेखा संबंधी संस्थानों के बीच द्विपक्षीय सहयोग, विचारों के आदान प्रदान और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्पेन के लेखा न्यायालय का दौरा किया। श्री मुर्मू और लेखा न्यायालय की अध्यक्ष सुश्री एनरिक्विक्टा चिकनो के बीच ऑडिट पद्धतियों और संस्थागत स्वतंत्रता पर केन्द्रित चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया। श्री मुर्मू ने स्पेन के राज्य प्रशासन के नियंत्रक पाब्लो एरेलानो पाडो से भी मुलाकात की। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। चीन में तीरंदाजी विश्व कप में महिलाओं की टीम स्पर्धा में ज्योति, अदिति और परनीत पहले स्थान पर रहीं। ज्योति सुरेखा वेन्नम कंपाउंड क्वालिफिकेशन राउंड में दूसरे स्थान पर रहीं। वहीं वर्तमान चैंपियन अदिति स्वामी 8वें स्थान पर रहीं। देश के पूर्वोत्तर हिस्से में इस महीने की 29 तारीख तक हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी के साथ साथ कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जनामणि ने अगले 2 से 3 दिनों तक उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम में वर्षा की संभावना व्यक्त की है। त्रिपुरा में भीषण गर्मी और लू के कारण राज्य सरकार ने सभी विद्यालयों को अगले 4 दिन तक बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा सचिव एनसी शर्मा ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि राज्य के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त टीटीएएडीसी के अंतर्गत आने वाले और निजी विद्यालय 24 से 27 अप्रैल के बीच बंद रहेंगे। चिकित्सा विशेषज्ञों ने लोगों को तेज धूप और गर्मी से बचने के लिए कहा है। जिला प्रशासन को भी आपातकालीन केन्द्र, त्वरित प्रतिक्रिया दलों को तैयार रहने, गर्मी से निपटने के लिए जरूरी संसाधनों और बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पिछले वर्ष नवंबर में हिमपात के कारण बंद किए गए लेह मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग को सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने सैन्य वाहनों के लिए खोल दिया है। बर्फ हटाने के लिए लेह में प्रोजेक्ट हिमांक और हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट दीपक चलाया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त। प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए लगातार रैलियां कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6ठा संस्करण नई दिल्ली में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बेहतर कल के लिए लचीले बुनियादी ढांचे में निवेश करना महत्वपूर्ण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने में वन संरक्षण की भूमिका पर जोर दिया। अमेरिकी सीनेट की टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में आज नई दिल्ली में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।